धर्म प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, धर्म गंगा के प्रवाह का आज तीसरा दिन गंगा के तट पर आए हो, गंगा का कल कल निनाद सुनने के लिए तट पर बहती हुई शीतल बयार का आनंद लेने के लिए, लेकिन बार बार कहता हूँ कि लाभ तो तभी मिलेगा जबकि गंगा का अमृत जल पीकर अपनी जन्म जन्म की प्यास बुझाओगे, जन्म जन्म के दुखों से छुटकारा पालोगे। पर काम तो ऐसे ही शुरू होता है, पहले धर्म के बारे में सुने तो सही, नहीं तो धर्म के नाम पर न जाने कैसे कैसे जंजाल, धर्म के नाम पर कितनी भ्रांतियां, कितनी गलत फहमियां, सारा जीवन इन भ्रांतियों में बीत जाता है। ये हिंदू धर्म है, ये बौद्ध धर्म है, ये जैन धर्म है, ये ईसाई धर्म है, ये सिख धर्म है, सारा जीवन इसी में बिता देते हैं। धर्म धर्म है, अरे उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, न हिंदू धर्म कर सकता है, न जैन धर्म कर सकता है, न बौद्ध धर्म कर सकता है, न ईसाई धर्म कर सकता है। धर्म है, ऐसा महान है, असीम है, अनंत है, अपरिमित है, जो अणु अणु को धारण किए हुए है, अणु अणु जिसे धारण किए हुए है, सजीव निर्जीव सब पर जिसकी हुकूमत चलती है, वो कुदरत का कानून, वो विश्व का विधान, वे निसर्ग के नियम, वो रित, उसे धर्म कहा जाता था। हमने भुला दिया तो भुलाकर अपनी ही हानि की, अब फिर याद करना है। पिछले दो दिनों में ये बात समझने की कोशिश की कि धर्म में और संप्रदाय में बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा भेद है, दोनों का तालमेल बैठता नहीं। एक आदमी जितना जितना धर्म में पुष्ट होता चला जाएगा, उतना उतना संप्रदाय से घृणा नहीं करेगा, लेकिन संप्रदाय की जकड़ से बाहर निकलता चला जाएगा। एक व्यक्ति जितना जितना संप्रदाय में पुष्ट होता चला जाएगा, वो धर्म से दूर होता चला जाएगा। जीवन में धर्म उतरे या न उतरे, वो क्योंकि संप्रदाय की मान्यताओं को मानता है, संप्रदाय के कर्मकांडों को पूरा करता है, इसलिए अपने आप को बड़ा धर्मवान समझता है। बेचारे का सारा जीवन धोखे में बीत जाएगा, प्रतिक्षण अपने भीतर धर्म का हनन कर रहा है। कुदरत का कानून कहता है भीतर विकार मत जगाओ, जगाओगे तुम्हें दंड मिलेगा। भीतर अपने चित्त को निर्मल करो, सद्गुणों से भरो, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, लेकिन इसे समझता ही नहीं। भीतर राग जगाया जा रहा है, द्वेष जगाया जा रहा है, क्रोध जगाया जा रहा है, ईर्ष्या, अहंकार, भय, वासना, भिन्न भिन्न प्रकार के विकार जगाता है, दंड मिलता है, दंड भोगता है, फिर भी होश नहीं आता। मन निर्मल करना चाहिए, करना चाहिए, उसमें मैत्री करुणा सद्भावना भरनी चाहिए, जानता है, समझता है बुद्धि से, लेकिन नहीं जगाता, कर नहीं पाता। किस तरह करे, ये विद्या ही खत्म हो गई, उसे ही भूल गए, तो कैसे करे? तो बेचारे को कोई पुरस्कार मिलता नहीं। ये ऊपर ऊपर के इंद्रिय सुख, ये सुख वो सुख, थोड़ी देर के लिए अपने आप को भरमा लिया इन सुखों में, लेकिन भीतर की जो आंतरिक शांति है, अभ्यंतरिक आनंद है, जो भीतर जो सतत रहता है, हमेशा रहता है, नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, उससे तो बड़ा दूर है, उसे चक्कर ही नहीं देखा, तो क्या जाना धर्म क्या है, कुछ नहीं जान पाया। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जो आदमी जितना संप्रदाय के दलदल में डूबता जा रहा है, उतना धर्म से दूर होता जा रहा है। और जो आदमी जितना धर्मवान होते जा रहा है उतना उतना अच्छा आदमी बनते जा रहा है, भला आदमी बनते जा रहा है, अपना भी मंगल साधता है, औरों के मंगल में सहायक हो जाता है। धर्म यदि सचमुच धर्म है तो उसमें आत्महित समाया हुआ, उसमें परहित समाया हुआ, आत्महित परहित, आत्महित परहित सर्वहित, यही धर्म होता है। धर्म एक एक व्यक्ति का होता है, संप्रदाय समूह का होता है। इसीलिए यहां जन्मे हुए उस महापुरुष ने कहा, एक एव चरे धम्मं, एक एक व्यक्ति को धर्म का आचरण करना है, एक एक व्यक्ति अपने भीतर धर्म का आचरण कर रहा है तो धर्मवान है। 10,000 लोगों का समूह है और हम कहें कि ये धर्मवान है, अरे तो धोखे की बात हुई ना। वो 10,000 या 20,000 या 1,00,000 आदमियों का समूह हिंदू हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, जैन हो सकता है, ईसाई हो सकता है, सिख हो सकता है, धर्मवान कैसे होगा, धर्मिष्ठ कैसे होगा, धार्मिक कैसे होगा? धार्मिक तो एक एक व्यक्ति को बनना पड़ेगा। इस 20-30-50,000 के समूह में कोई न जाने अपने भीतर कैसा विकार जगा रहा है, कोई कैसा विकार जगा रहा है, धर्म से लेन देन नहीं जिन बातों का उसमें उलझा हुआ है, धर्मिष्ठ कैसे होगा? एक एव चरे धम्मं, न धम्म धजिका भवेत। कभी धर्म संप्रदाय न बन जाए, धर्म का झंडा उठा करके लोगों का भाववेश न जगाने शुरू कर दे, लोगों के जज्बात, धर्म के नाम पर लोगों के जज्बात जगाएं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। राजनीति में तो ऐसा होता है, धर्म नीति में नहीं होता। राजनीति बिल्कुल अलग, धर्म नीति बिल्कुल अलग। धर्म में तो हर व्यक्ति को अपने भीतर के विकार निकालने ही होंगे। कुदरत क्या चाहती है, प्रकृति क्या चाहती है, निसर्ग क्या चाहती है, या यूं कहें परमात्मा क्या चाहता है, उसका क्या हुक्म है, उसकी क्या रजा है, तो उस हुक्म रजाई के अनुसार अपना जीवन ढालना शुरू कर दे, बड़ा मंगल हो जाएगा। फिर कहे अपने आप को हिंदू कहे, क्या फर्क पड़ता है, अपने को बौद्ध कहे, अपने को जैन कहे, अपने को ईसाई कहे, अपने को सिख कहे, अरे चाहे जैसा नाम रखे, चाहे जैसा बिल्ला लगाए फिरे, धर्मिष्ठ तो बने, धार्मिक तो बने, किसी पर एहसान नहीं करने के लिए, अपने भले के लिए, पहले तो अपना भला होता है। धर्म हमको बड़ा स्वार्थी बनाता है, ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि धर्म हमें बहुत स्वार्थी बनाता है। पर अपना स्वार्थ समझें तो सही, किस बात में है, जानते ही नहीं हमारा स्वार्थ किस बात में है, तो स्वार्थ के नाम पर अपनी हानि किए जा रहे हैं, स्वार्थ के नाम पर हर तरह से अपने को कष्ट दिए जा रहे हैं और समझते हैं हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, नहीं हो रहा। हमारा स्वार्थ इसी बात में है कि हम अपने भीतर विकारों से कैसे मुक्ति पाएं, कैसे अपने चित्त को समता में स्थापित करें, उसे संतुलित करें, उसकी विषमता दूर करें, उसकी बेचैनी दूर करें, उसकी अशांति दूर करें। ऐसा होते ही सद्गुण अपने आप आने लग जाएंगे, खूब मैत्री जागेगी, खूब करुणा जागेगी, खूब मुदिता जागेगी, खूब उपेक्षा समता भाव जागेगा। यह प्रकृति का नियम है। निर्मल चित्त अपने स्वभाव से अनंत मैत्री का जीवन जीता है, अनंत करुणा का जीवन जीता है, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा यानी समता भाव का जीवन जीता है, ये उसका स्वभाव है। और जैसे ही मैला हुआ, अरे कहां मैत्री, कहां करुणा, कहां सद्भावना, गंदगी भीतर आई ना तो दुर्गुण ही दुर्गुण आने शुरू हो जाएंगे। प्रकृति का नियम है। तो जो व्यक्ति प्रकृति के नियम को समझ रहा है तो धर्म को समझ रहा है, हिंदू धर्म को नहीं, बौद्ध धर्म को नहीं, जैन धर्म को नहीं, धर्म को समझ रहा है। धर्म सार्वजनीन होता है, हिंदू धर्म केवल हिंदुओं का होके रह जाएगा, बौद्ध धर्म केवल बौद्धों का होके रह जाएगा, जैन धर्म केवल जैनियों का, ईसाई धर्म केवल ईसाइयों का, सिख धर्म केवल सिखों का, पारसी धर्म केवल पारसियों का, यहूदी धर्म केवल यहूदियों का, पर धर्म तो सबका है। जैसे इन दो दिनों में समझा कि धर्म स्वभाव को कहते हैं, प्रकृति को कहते हैं, निसर्ग को कहते हैं, कुदरत को कहते हैं, उसके नियमों को कहते हैं। आग का धर्म जलना है और जलाना है, ये उसका स्वभाव है। वो हिंदू के लिए दूसरा नहीं होता, मुसलमान के लिए दूसरा नहीं होता, जैन के लिए दूसरा नहीं होता, स्वभाव है। जो आग पर हाथ धरेगा आग उसे जलाएगी ही। वो इस बात को नहीं देखेगी कि हाथ धरने वाला चोटी रखता है कि दाढ़ी रखता है कि लंबे केस रखता है कि सिर मुंडा कर आया है, कुछ नहीं देखेगी। वो इस आत्मा को मानता है कि परमात्मा को मानता है कि नहीं मानता है, कि आत्मा परमात्मा एक ही है ऐसा मानता है कि नहीं दो अलग अलग है ऐसा मानता है, चाहे सो मान, आग पर हाथ रखा है ना, जलेगा ही। वो पीले कपड़े पहन कर आया है कि सफेद कपड़े पहन कर आया है, कि लाल कपड़े पहन के आया है कि काले कपड़े पहन के आया है, नहीं देखेगी आग, आग पर हाथ रखा है ना, जलेगा ही। भाई ठीक इसी प्रकार हमारे मन में जो विकार जागते हैं उनका स्वभाव है, वो हमें जलाते हैं, व्याकुल करते हैं, बेचैन करते हैं। अब अपने आप को हम चाहे जिस नाम से पुकारें, अगर विकार जगाया है तो बेचैनी साथ साथ आएगी ही, अशांति साथ साथ आएगी ही, दुख साथ साथ आएगा ही। ये लॉ ऑफ नेचर है। इसी को अपने यहाँ धर्म कहते थे, भूल गए, धर्म को हिंदू बना दिया, बौद्ध बना दिया, जैन बना दिया, ईसाई बना दिया, तो धर्म छूट गया। हिंदू प्रमुख हो गया, बौद्ध प्रमुख हो गया, जैन प्रमुख हो गया, ईसाई प्रमुख हो गया, और गिनती गिनने लगे, हमारे हिंदू कितने यहाँ, हमारे बौद्ध कितने यहाँ, हमारे जैन कितने यहाँ, कोई ये नहीं गिनता कि धार्मिक कितने यहाँ। काम की बात तो वो कि हमारे देश में या इस विश्व में धार्मिक लोग कितने, जो अच्छा जीवन जीने वाले हैं, मन को निर्मल रखने वाले हैं, सद्गुणों से भर करके ऐसा जीवन जीते हैं जो अपने लिए भी अच्छा है, औरों के लिए भी अच्छा है। अरे ऐसे लोग संत होते हैं, ऐसे संत होना चाहिए। ऐसे संत होने के लिए विद्या ही खो बैठे तो कैसे हो। तो एक बात ये सीखी कि धर्म और संप्रदाय का कोई तालमेल नहीं बैठता, दोनों बिल्कुल अलग अलग बात हैं। एक सार्वजनीन बात है और एक छोटे समुदाय की, एक समूह की बात है। दूसरी बात ये समझी कि धर्म के तीन कदमों में, तीन चरणों में, तीन पावड़ों में, पहला पावड़ा, पहला पांव, पहला कदम शील सदाचार का जीवन जीना, यानी अपने शरीर से और अपने वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो, जिससे अन्य प्राणियों को पीड़ा पहुंचती हो, ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे। इस मुद्दे को समझते हुए एक बात और ध्यान में आई कि जब हम शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे अन्य प्राणियों की हानि होती हो, अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो, तो हम अन्य प्राणियों पर एहसान नहीं कर रहे। ऊपर ऊपर से तो यूं लगेगा, देख मैं हत्या नहीं करता, तो जिनकी हत्या नहीं करता उन पर बड़ा एहसान कर रहा हूं, नहीं तो मार देता उनको। चोरी नहीं करता तो जिनकी वस्तुएं मूल्यवान वस्तुएं हैं मैं नहीं चुराता, तो उन पर एहसान कर रहा हूं। इस प्रकार शील का पालन करके मैं औरों पर एहसान कर रहा हूं, ये तो ऊपर ऊपर से, ये तो प्रकट सत्य है, भासमान सत्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं कितना अच्छा आदमी हो गया, देखो मैं किसी का नुकसान नहीं करता। सच्चाई गहराई में जाए तो सच्चाई ये समझ में आएगी कि मैं अपने आप पर एहसान कर रहा हूं। जब जब हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, निंदा की बात, चुगली की बात नहीं बोलता, निकम्मी बात नहीं बोलता, तब तब अपने आप पर एहसान कर रहा हूं। क्योंकि जब जब मैं कोई शील तोड़ता हूं, कोई सदाचार तोड़ता हूं, तोड़ ही नहीं सकता जब तक कि पहले अपने मन में विकार न जगा लूं। विकार जगाया कि कुदरत का कानून तोड़ दिया, विकार जगाया कि धर्म की हानि कर दी, धर्म ने दंड देना शुरू किया। धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षा करते हैं धर्म की, धर्म बड़ी रक्षा करता हमारी, हम नहीं रक्षा करते ना तो हमें दंड देता है, तुरंत दंड देता है। राज्य का दंड कौन जाने कोई बच जाए, लेकिन कुदरत के दंड से कोई आदमी बच नहीं सकता, क्योंकि वो तत्काल होता है, जैसे ही विकार जागा वैसे ही व्याकुल हुआ, जैसे ही विकार जागा वैसे ही व्याकुल हुआ। अरे किसी की हत्या तो पीछे करेगा भाई, पहले अपने अंदर क्रोध जगाएगा ना, तो आक्रमण अपने आप पर करने लगा, अपने आप पर धावा बोल दिया, अपने आप का हनन करने लगा, अपनी हत्या करने लगा। कितना व्याकुल हो गया, कितना, अरे दूसरे को तो फिर मारेगा, जरा समय लगेगा उसे मारने में तो, लेकिन अपने आप को तो मारने ही लगा ना, कितनी व्याकुलता में डूब गया। कोई आदमी क्रोध जगाए और ये समझे कि उसके भीतर व्याकुलता नहीं जागेगी, अशांति नहीं जागेगी, बेचैनी नहीं जागेगी, अरे भाई होने वाली बात नहीं है। वो अपने आप को हजार हिंदू कहता फिरे, बौद्ध कहता फिरे, जैन कहता फिरे, ईसाई कहता फिरे, नेपाली कहता फिरे, भारतीय कहता फिरे, अमेरिकन कहता फिरे, रूसी कहता फिरे, जिसने विकार जगाया तत्काल व्याकुल होगा, क्योंकि अपने भीतर देखना सीखा नहीं। अपने यहां जो सम्यक दर्शन कहते थे, सही बात को जैसे है वैसे अनुभूति के स्तर पर देख लेना, ये सम्यक दर्शन होता था, तो उसी को विपश्यना कहते थे। अपने भीतर क्या हो रहा है, बाहर की घटना, बाहर की घटना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे भीतर क्या होने लगा। बाहर एक अनचाही घटना घटी, मेरे भीतर क्या होने लगा। बाहर एक मनचाही घटना घटी, मेरे भीतर क्या होने लगा। तत्काल उसी समय अगर देखना सीख जाए तो धर्म का दर्शन होने लगा, धर्म का दर्शन होने लगा, सत्य का दर्शन होने लगा। अरे सत्य ही तो ईश्वर है, ईश्वर का दर्शन होने लगा। परम सत्य ही तो परमेश्वर है, परमेश्वर का दर्शन होने लगेगा। सत्य के सहारे चलते 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 परम सत्य तक पहुंच ही जाओगे। निर्विवाद बात है, अनुभव की बात है, एक का अनुभव नहीं, दो का अनुभव नहीं, हजारों लाखों लोगों का अनुभव है। सत्य के सहारे चलते चलते परम सत्य तक आदमी पहुंच ही जाता है। हर आदमी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी वर्ग का हो, किसी देश का हो, किसी बोली भाषा का हो, किसी रंग रूप का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो शील का पालन इसलिए कर रहे हैं कि अपने भीतर हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ताकि धर्म हमारी रक्षा करे, हमें व्याकुल नहीं बनने दे, हमें दुखियारा नहीं बनने दे। हम विकार नहीं जगा रहे हैं तो अपने आप हमें पुरस्कार मिल रहा है, विकार जगाते हैं हमें दंड मिलता है, तत्काल मिलता है। ऐसे ही विकार नहीं जगाते हैं, चित्त को निर्मल रखते हैं तो पुरस्कार मिलता है, तुरंत मिलता है। मरने के बाद होगा, मरने के बाद भी हो, हम उसकी ना नहीं कहते उसे, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो अब क्या हो रहा है, अन्यथा धोखे में रह जाएंगे। मरने के बाद ये होगा, मरने के बाद ये होगा, अरे अब कुछ नहीं हो रहा, अब मेरे में जरा सा सुधार नहीं हो रहा, अब मुझे जरा सी सुख शांति नहीं मिल रही, और मरने के बाद मुझे वो देवलोक मिल जाएगा, वो ब्रह्मलोक मिल जाएगा, वो निर्वाण मिल जाएगा, वो मोक्ष मिल जाएगा। तो भाई धोखा ही हुआ ना, इससे बढ़कर और क्या धोखा होगा। अब मिलना शुरू हो गया, अब जरा जरा सी भी सुख शांति मिलनी शुरू हो गई, अब जरा जरा सी भी दुखों से मुक्ति होनी शुरू हो गई, तो कदम कदम चलते चलते उस अवस्था पर पहुंच जाएंगे जहां केवल सुख शांति ही सुख शांति है, जहां दुख का नामो निशान नहीं है। उस इंद्रियातीत अवस्था, भवातीत अवस्था, लोकातीत अवस्था, उसका साक्षात्कार हो ही जाएगा। अब भी आरंभ होना चाहिए, ये बात शील का कदम उठाते ही ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम शील का कदम क्यों उठा रहे हैं, कि अपने आप पर एहसान कर रहे हैं, हमको धर्म के रास्ते चलना है। एक आदमी के बाद समझ में आ गई कि भाई मुझे शील सदाचार का जीवन जीना है, कोई ऐसा काम शरीर और वाणी से नहीं करेंगे जिससे समाज की व्यवस्था बिगड़े, जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग हो, ये हमारे अपने लोभ के लिए, अपने लाभ के लिए हमें करना है। बात समझ में आ गई, समझ में तो आ गई, लेकिन करें कैसे। ऐसे ही उपदेश अगर सुन के रह जाएंगे, ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदियों से सुनते आ रहे हैं भाई, क्या फर्क पड़ा, इस कान से सुना उस कान से निकल गया। हाँ हाँ नहीं करना चाहिए, हम भी जानते हैं, हमारा धर्म भी यही कहता है। कोई कहेगा हमारा धर्म भी यही कहता है, अरे तेरा धर्म ये कहता है पर तू क्या करता है, तूने ऐसा किया क्या, लड़ेगा। तुम तो इतना ही कहती हो, हमारे यहां देखो दो और हैं, हमारे यहां पांच और हैं, अरे तेरे यहां दो है कि पांच है कि दस है, तू तो एक का भी पालन नहीं करता ना। कैसा नशा चढ़ गया, संप्रदाय के नाम पर धर्म बिना पालन किए हुए एक आदमी अपने को धर्मवान समझता है, कैसा नशा चढ़ गया। ये होश आ जाए कि भाई धर्म तो ये है लेकिन मैं पालन नहीं कर पा रहा, इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि मैं धार्मिक नहीं हूं, मैं धर्म विहारी धर्मचारी नहीं हूं, क्योंकि अभी भी सदाचार का जीवन जैसे जीना चाहिए वैसे मैं नहीं जी पा रहा हूं, तब उस आदमी के लिए रास्ता खुल जाएगा। वो अपने रोग को स्वीकार करता है तब वो रोग का कारण ढूंढना शुरू करेगा कि ऐसे रोग का रोगी क्यों हूं मैं, जानता हूं कि ये रोग है, मैं दुराचार का जीवन जीता हूं, ये जानता हूं कि ये बुरी बात है, अपनी हानि करता हूं औरों की हानि करता हूं, इसके बाहर क्यों नहीं निकल पाता, तो इसका कारण क्या है। नहीं तो वो दुर्योधन वाली बात वैसे ही कहता चला जाएगा, जानामि धर्मम् न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम् न च मे निवृत्ति। खूब जानता हूं धर्म क्या है लेकिन उस ओर प्रवृत्ति नहीं होती, खूब जानता हूं अधर्म क्या है उससे निवृत्ति नहीं होती, छुटकारा नहीं होता। दुर्योधन है ना, तो हमें तो सुयोधन बनना है, दुर्योधन नहीं बनना है। तो सुयोधन कैसे बनेंगे कि उसका कारण ढूंढें कि क्यों ऐसा होता है, क्यों मैं धर्म को समझते हुए भी धर्म का पालन क्यों नहीं कर पा रहा, अधर्म को समझते हुए भी धर्म पर कदम क्यों उठाए जा रहा हूं, धर्म के मार्ग अधर्म के मार्ग पर। तो बात समझ में आएगी कि मन मेरे वश में नहीं है, मैं अपने मन का मालिक नहीं हूं। बुद्धि से खूब समझता हूं, खूब समझता हूं धर्म ऐसा है, धर्म ऐसा है, इसके पालन करने में मेरा ये कल्याण है, ये कल्याण है, नहीं कर पा रहा क्योंकि मन वश में नहीं है। तो भाई अगला कदम, मन को कैसे वश में करें, वो भी कोरा उपदेश रह जाए तो बस इस कान से सुनेंगे उस कान से निकल जाएगा। अब तो अभ्यास करने की बात है, प्रयत्न करने की बात है, परिश्रम करने की बात है, पुरुषार्थ करने की बात है, पराक्रम करने की बात है, तो मन वश में होता है। बहुत युद्ध लड़ना पड़ता है अपने आप के साथ, अपने मन के साथ। कैसे मन को वश में करें, अपने यहां बहुत ऋषि हुए, बहुत मुनि हुए, संत हुए, सदगुरु हुए, बुद्ध हुए, अरहंत हुए, जैन हुए, सब लोगों ने इसी बात की खोज की कि मनुष्य मात्र प्राणी मात्र भीतर से कितना दुखियारा है, ये कैसे दुखों के बाहर आए। तो अनेक रास्ते सोचे, उनका उपयोग हुआ, उनका लाभ भी हुआ। हम किसी रास्ते के किसी मार्ग के किसी विधि की निंदा करने नहीं आए, लेकिन जो अंतर है वो समझ लेना चाहिए। तो एक विधि जो कि बहुत ही कॉमन है, सामान्य है, वो ये कि जब मन को वश में करना हो तो किसी नाम को जपना शुरू कर दो, भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर, कोई नाम, किसी देवी का नाम, किसी देवता का नाम, किसी ईश्वर का नाम, किसी अल्लाह मियाँ का नाम, किसी गॉड का नाम, किसी संत का नाम, किसी सदगुरु का नाम, किसी महापुरुष का नाम, जिस पर श्रद्धा हो, जिस पर श्रद्धा हो, बार 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 उसका नाम मन ही मन दोहराते चले जाओ। मन एकदम एकाग्र होता चला जाएगा, शांत होता चला जाएगा, बड़े काम की बात हुई। लेकिन कठिनाई, सबसे बड़ी कठिनाई तो ये आई कि जो हमारा रोग है वो सार्वजनिक रोग है। क्रोध आता है और मैं व्याकुल हो जाता हूं, भय आता है व्याकुल हो जाता हूं, अहंकार आता है व्याकुल हो जाता हूं। विकार जगा के व्याकुल हो जाना ये केवल हिंदुओं का रोग नहीं है, ये केवल बौद्धों का रोग नहीं है, ये केवल जैनियों का कि ईसाइयों का कि मुसलमानों का रोग नहीं है, ये सार्वजनिक रोग है, सबका रोग है। जो सार्वजनिक रोग है उसका इलाज भी सार्वजनिक ही होता है, सांप्रदायिक नहीं होता। अगर हम किसी से कहें कि जब जब तेरा मन बहुत बेचैन हो, जब जब तेरा मन बड़ा चंचल हो, तो अपने किसी देवी देवता का नाम लिए जा, तो कोई आदमी राम 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 कहेगा, तो दूसरे कहेंगे हम राम राम क्यों कहें भाई, हम तो बुद्ध बुद्ध कहेंगे, तीसरा कहेगा हम बुद्ध बुद्ध क्यों कहें, हम तो खुदा खुदा कहेंगे, या हम तो गॉड गॉड कहेंगे, सार्वजनिक बात नहीं हुई ना, सबकी अलग अलग बात हो गई, वो एक कारण, इससे ज्यादा गहरा कारण और है, उसे समझेंगे। दूसरी बात, दूसरा तरीका, इसी तरह से कल्पना करेंगे जिस किसी देवी पर, देवता पर, ईश्वर पर, ब्रह्म पर, गुरु पर, सदगुरु पर, संत पर, अरहंत पर, बुद्ध पर, जिन पर, जिस किसी पर बहुत श्रद्धा हो, उसकी मूर्ति सामने रखी, उसका चित्र सामने रखा, खुले आंख देखते रहे, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट चित्र को देखते रहे, फिर आंख बंद कर ली, आंख बंद करके कल्पना किया उस चित्र का, उस मूर्ति का, फिर थोड़ी देर आंख खोल के देख ली, फिर आंख बंद करके उसकी कल्पना की, यूं करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो कुछ दिनों में ऐसी हालत हो जाएगी कि जैसे ही आंख बंद की वो चित्र सामने आ गया, जैसे ही आंख बंद की वो मूर्त सामने आ गई, अब जैसे सामने आ गई तो उसी को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, चित्त शांत होने लगा, एकाग्र होने लगा। ये एक तरीका है चित्त को शांत करने का, एकाग्र करने का। और एक तरीका है, मन में कोई अच्छा चिंतन शुरू कर दें, अच्छा हो या बुरा हो, किसी भी एक तरह का चिंतन बार बार दोहराते रहें, दोहराते रहें, जैसे मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, बार बार दोहराते रहे, चिंतन है एक तरह का, सही है या गलत है, लेकिन उस चिंतन को बार 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 दोहराते रहें, मैं नित्य हूं, शाश्वत हूं, ध्रुव हूं, मैं नित्य हूं, शाश्वत हूं, ध्रुव हूं, दोहराते रहे, दोहराते रहे, मैं अनात्म हूं, ये आत्मा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब धोखा है, धोखा है, दोहराते रहे। जैसे जैसे दोहराते जाएंगे चित्त अपने आप शांत होता चला जाएगा, एकाग्र, क्योंकि उस मान्यता के प्रति श्रद्धा है, बचपन से वो मान्यता हमने सुनी है और हमको प्रिय लगती है, हमको तर्क संगत लगती है, बुद्धि संगत लगती है, सही लगती है, तो बार 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 उसका चिंतन करना हमारे लिए आसान हो गया। वही बात है, जैसे किसी का नाम लेते हैं तो जिस पर श्रद्धा है उसका बार बार नाम लेना आसान है, नहीं तो नाम कोई हो, ये घड़ी पहन रखी है और बार 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 घड़ी 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 ऐसे ही बोलता चला जाए, यही बोलता चला जाए, घड़ी 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 घड़ी, मन एकदम शांत हो जाएगा, उतना ही शांत हो जाएगा जितना राम राम कहने से होगा, कि बुद्ध बुद्ध कहने से होगा, कि ईश्वर ईश्वर कहने से होगा, कि अल्लाह अल्लाह कहने से होगा। बात क्या है, वैज्ञानिक ढंग से बात को समझें, कि जैसे छोटे बच्चे को माँ सुलाती है तो बार 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 उसको लोरी देती है, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, और वो सो ही जाता है, बार 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 एक ही बात सुनते 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 मन अपने आप से सोने लगा, उसे शांति मिलने लगी, एकाग्र हो गया। तो कोई शब्द इस्तेमाल करो, लेकिन क्योंकि हमको किसी एक शब्द में बहुत श्रद्धा है, इसलिए हम उस शब्द को बड़ी आसानी से, किसी को कहे घड़ी 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 कहता जा, क्या पड़ा इस घड़ी में, एक बार कह दिया ना, दो बार कह दिया ना, और फिर एक कान में कहने वालों ने, बेचारों ने अच्छे भाव से ही कहा लेकिन उलझा तो दिया ना, एक बात कह दी कि देख तू अमुक देवी का, देवता का, अथवा ईश्वर का, या ब्रह्म का, या अमुक महापुरुष का बार बार नाम लेगा ना, तो ये नाम तुझे तार देगा, भाव सागर से तार देगा, सारे दुखों से मुक्त कर देगा, तुझे स्वर्ग मिलेगा, तुझे ब्रह्मलोक मिलेगा, तुझे निर्वाण मिलेगा। अरे तो सस्ता सौदा है ना, बार 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 इसे कहेंगे और मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वैसी श्रद्धा जागी मन में तो आसान हो गया। ऐसे ही श्रद्धा जागी मन में कि अमुक देवी का, देवता का रूप का ध्यान करेंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी, ये श्रद्धा जागी तो आसान हो गया। इसी प्रकार कोई भाव, कोई विचार, ये विचार सत्य है, ये दार्शनिक मान्यता ही सही है, हम बचपन से सुनते आए हैं, हमारी परंपरा ये दार्शनिक मान्यता मानने वाली, औरों की परंपरा गलत, हमारी मान्यता सही, हमारा दर्शन सम्यक, बाकी का मिथ्या, इस तरह का भाव बचपन से ही सुना तो सुनते सुनते वही लेप लगते लगते बार 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 उसको दोहराना आसान हो गया। किसी बात को भी बार 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 दोहराते चले जाओ, किसी नाम को दोहराओ, किसी रूप को दोहराओ, किसी चिंतन को दोहराओ, अपने आप मन शांत होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से और अनेक अनेक ऐसे विधियां हैं जिनसे मन को शांत किया जा सकता है, एकाग्र किया जा सकता है। जिसको विपश्यना के रास्ते चलना है उसके लिए ये सारे मना हैं, एकदम मना, वर्बलाइजेशन बिल्कुल नहीं हो, मानसिक भी किसी शब्द का उच्चारण नहीं हो जाए, नहीं बाधा आ जाएगी। कोई शब्द मन ही मन उच्चारण नहीं होने दें, किसी तरह की कोई रूप, कोई आकृति, कोई कल्पना आने न पाए, आए कि भटक जाएंगे, फिर विपश्यना का रास्ता नहीं होगा, और रास्ते पड़ जाएंगे। किसी तरह का बार 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 चिंतन करेंगे, किसी तरह का करें, फिर कठिनाई में पड़ जाएंगे। तो क्या करने, क्या करना है, इस समझने के पहले विपश्यना को समझ लेना चाहिए कि ये एक ऐसा वैज्ञानिक रास्ता है जिसमें हम अपने आप के बारे में जो सच्चाई है उसका अनुसंधान करने का काम करते हैं। सुनने को तो बहुत सुना कि ये सारा शरीर नश्वर है, भंगुर है, अनित्य है, सुनते आए, बचपन से सुनते आए, अनुभव नहीं हुआ ना, ये तो सुनी हुई बात है, पढ़ी हुई बात है, हम उसे मान रहे हैं। बहुत होता तो उस पर बुद्धि लगा दी, तर्क लगा लिया और इसलिए मान रहे हैं। अनुभूति नहीं हुई, श्रुति है, श्रद्धा है, लेकिन अनुभूति नहीं है। बिना अनुभूति के तुम्हारा अपना ज्ञान नहीं है, किसी और का ज्ञान है। कोई अनुभूति बुद्ध को हुई, कोई अनुभूति महावीर को हुई, कोई अनुभूति और किसी को हुई, किसी संत को हुई, किसी महापुरुष को हुई, वो उसकी अनुभूति है, उसका लाभ उसी एक व्यक्ति को मिलेगा। किसी सिद्धार्थ गौतम ने परम सत्य का भीतर साक्षात्कार किया तो उससे केवल एक व्यक्ति मुक्त हुआ, और वो अकेला व्यक्ति केवल सिद्धार्थ गौतम है, दूसरा नहीं। औरों को मार्गदर्शन मिलता है, औरों को प्रेरणा मिलती है, देख भाई ऐसे करते 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 ये व्यक्ति परम सत्य तक पहुंच गया, तो हम भी चल के देखें, चलते चलते हम भी पहुंच जाएं, चलो चल के तो देखें, बस इतना ही लाभ। अन्यथा हम केवल इसी बात का एक नशा सिर पर सवार कर लें, हमारा ही मार्ग ठीक है, क्योंकि देखो हमारे बुद्ध मुक्त हुए, हमारे महावीर मुक्त हुए, या हमारा अमुक स्थित प्रज्ञ हो गया, अनासक्त हो गया, अमुक हो गया, अरे वो हो गया, तू क्या हो गया, कुछ नहीं ना, मैं तो मुझे अपने आप को स्थित प्रज्ञ करने के लिए, प्रज्ञा में स्थित करने के लिए, अनासक्त करने के लिए, अपने भीतर बोधि जगाने के लिए, अपने भीतर अपने आप को जीतने के लिए स्वयं कदम उठाने पड़ते हैं, और वो कदम अनुभूतियों के कदम हैं। तो पहली बात, अपने बारे में क्या सच्चाई है इसकी अनुभूति करनी होती है। ये सारा शरीर स्कंद जिसे मैं मेरा मेरा किए जा रहा हूं, ऊपर ऊपर से खूब कहता हूं, अरे ये मैं थोड़ा ही है, ये शरीर मैं थोड़ी है, ये शरीर मेरा थोड़ा ही है, ये शरीर मेरी आत्मा थोड़ी है, यूं ऊपर ऊपर से कहता है क्योंकि बचपन से सुनता आया है, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरी आत्मा नहीं, शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, तो इस तरह के लेप बचपन से लगे हैं, इसलिए कहता है। लेकिन तूने जाना कब, तूने कैसे जाना कि शरीर तू नहीं है, तूने कैसे जाना कि शरीर तेरा नहीं है, तूने कैसे जाना कि शरीर तेरा अपनापा नहीं है, तूने कैसे जाना, जाना नहीं ना, मान रहा है ना। मानने और जानने में जमीन आसमान का अंतर है, मानने वाला मानते ही रहता है, पल्ले कुछ नहीं पड़ता, और जानने वाला सब कुछ जान जाता है। शुरू तो करे जानना, तो पहले ये शरीर सचमुच क्या है, कैसा है, अनुभूति पर उतरे। ऐसे ही ये चित्त स्कंद, मानस का स्कंद, जिसको मैं मेरा मेरा किए जा रहा है, बुद्धि से हजार समझता है ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं, लेकिन फिर भी मैं मेरा मेरा। अंदर जाके जब अनुभव करना शुरू करेगा तब पता लगेगा कि शरीर के साथ कितना गहरा तादात्म्य स्थापित कर लिया, वस्तुतः कितना मैं मेरा बना लिया इसे, और कितनी गहरी आसक्ति पैदा कर ली इस शरीर के प्रति, कितनी बड़ी आसक्ति पैदा कर ली इस चित्त के प्रति, कितनी बड़ी आसक्ति पैदा कर ली, और दुखियारा हो गया। ये अपनी अनुभूति पर उतरे तब बात समझ में आए ना, तो हर बात अनुभूति पर उतारनी है। अनुभूति पर उतारने पर अपने बारे में जो सच्चाई है वो प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। अपने यहाँ के संतों ने सच्चाई को अपने भीतर अनुभूतियों के स्तर पर उतारा, तभी कहा कि आपो जाने आपो आप, आपो जाने आपो आप, ओ रोगन व्यापे तीनों ताप। जो अपने आप को जान गया उसके सारे भव रोग समाप्त हो गए, सारे भव ताप समाप्त हो गए। अपने आप को जानना है, सभी संतों ने यही बात कही, नो दाइसेल्फ। क्या नो दाइसेल्फ, अपने आप को जानो। कैसे जानो, ये पुस्तक कहती है ना तू ये है, तू ये है, तू ये है, इसलिए हम मान रहे हैं। अरे जानते नहीं ना, मान रहे हो ना भाई, जानो उसको। कैसे जानो, बिना जाने बिना बात बनती नहीं, केवल मानने से नहीं होती, और वो तब होगा जबकि हम एक एक क्षण जो जो सच्चाई आ रही है उसको देखते चलेंगे और उस पर अपना कोई आरोपण नहीं होने देंगे। जो सच्चाई आई इस क्षण उसे जान लिया, अगले क्षण जो सच्चाई प्रकट हुई उसे जान लिया, यूं क्षण प्रतिक्षण मोमेंट टू मोमेंट मोमेंट टू मोमेंट, उस मोमेंट की उस क्षण की जो सच्चाई है बस उसे ही जानेंगे, उसका दर्शन करेंगे, माने उसको साक्षी भाव से जानेंगे, तटस्थ भाव से जानेंगे और उसके स्वभाव को समझेंगे। तो वो जो ज्ञान जागेगा उस दर्शन से, उसी को यथाभूत ज्ञान दर्शन कहा आपने यहां कि इस क्षण जो हुआ यथाभूत जो घटना घटी हमने उसका साक्षात्कार किया, उसे दृष्टा भाव से जाना, भोक्ता भाव नहीं दृष्टा भाव से जाना, तटस्थ भाव से जाना और उसके स्वभाव को समझ लिया। जो भी स्वभाव है अनित्य है तो समझ लिया, देख उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया ना, उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया ना, यूं उसके नित्य स्वभाव को समझ लिया। और जिस वक्त नित्य अवस्था का साक्षात्कार होगा उस समय नित्य अवस्था को मान लेंगे, इतने नहीं जाने बिना नहीं मानेंगे, जान 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 के एक एक कदम चलते हुए जो सच्चाई आई उसे जाना और तब माना, जो सच्चाई आई उसे जाना और तब माना। हमारा गुरु महाराज कहता है इसलिए मान लो, बुद्ध भगवान कहते हैं इसलिए मान लो, हमारी गीता कहती है, हमारी बाइबल कहती है, हमारी कुरान कहती है, तो बस मान के ही रह जाओगे, जानने का काम छूट जाएगा। दोष नहीं है महापुरुषों की वाणी सुनने में, पढ़ने में, चिंतन मनन करने में, लेकिन वहीं गाड़ी अटक जाए तो रह गया कोरा का कोरा। वो सब प्रेरणा देने के लिए है, वो सब मार्गदर्शन देने के लिए है, अनुभूति स्वयं करनी पड़ती है और अनुभूति अपने आप की, अपने आप के बारे में जानना है। पंजाब का एक संत, मुस्लिम संत कहता है, अरे संत संत है भाई, चाहे पंजाब का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे अरब का हो, चाहे कहीं का हो, जिसने अपने चित्त को शांत कर लिया, निर्मल कर लिया, वो संत हो गया। और वो मुसलमान हो कि हिंदू हो कि जैन हो कि सिख हो कि बौद्ध हो, जिसने अपने चित्त को शांत कर लिया, निर्मल कर लिया, तो संत हो गया। तो पंजाब का एक मुस्लिम संत कहता है कि हाशिम तिन्हा और रब पछाता, जिन्हा अपना आप पछाता, हाशिम तिन्हा रब पछाता। जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को जान लिया, अपने आप का साक्षात्कार कर लिया, अरे उसने रब को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, क्योंकि सच्चाई को जान लिया ना। जिस दिन ये बात समझ में आ जाए कि सत्य ही ईश्वर है, परम सत्य ही परमेश्वर है, उस दिन काम आसान हो जाएगा। अपने आप को जानना सीखें तो अपने आप को जानने के लिए अनुभूति पर सच्चाई को उतारनी पड़ेगी। जैसे कल कहा किम सच्चियारा हो विये, किम कूड़े तुट्टे पाले। कैसे सच्चियारे बने, क्या सच्चियारे बने, ये विपश्यना का की घोषणा है, एक संत की घोषणा विपश्यना के बारे में कि क्षण प्रतिक्षण सत्य के साथ ही चले, कोई कल्पना नजदीक नहीं आने दें, कोई मान्यता का लेप कितना ही सही क्यों ना हो, मान्यता का लेप नहीं लगने दें। सच्चाई हमारे सामने प्रकट हुई और हमने ऐनक लगा लिया, हरे रंग का ऐनक लगा लिया, चश्मा लगा लिया, अब सच्चाई की और हमारे देखने के बीच में हरा रंग आ गया ना, सच्चाई कहां आई। हमने लाल रंग का चश्मा लगा लिया, लाल बीच में आ गया ना, लड़ाई बीच में आ गया ना, सच्चाई कहां आई। तो वो चश्मे जो मान्यताओं के हैं, दार्शनिक मान्यताओं के हैं, परंपरा की मान्यताओं के हैं, उसके निंदा करके नहीं कि हमको एक वैज्ञानिक की तरह सत्य का अनुसंधान करना है, उसका विश्लेषण करना है, विघटन करना है, उसकी एनालिटिकल स्टडी करनी है अनुभूति के स्तर पर, तो और कोई रंग उसमें आने ना पाए, जैसा है वैसा है, तो वही सच्चियारा हुआ। किम सच्चियारा हो बिये, किम कूड़े तुट्टे पाल, झूठ की कोई परत नहीं आने पावे, क्योंकि बचपन से कोई न कोई बात मानते आए हैं, सुनते आए हैं, मानते आए हैं, सुनते आए हैं, मानते आए हैं, उसका लेप लगा लेंगे तो सच्चियारे नहीं होंगे, वो सारे लेप दूर करने पड़ते हैं, तो हुकुम रजाई सामने आने लगेगी, धर्म सामने आने लगेगा, कुदरत का कानून सामने आने लगेगा, उसके मुताबिक चलना आसान हो जाएगा। हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल, वो हमारे साथ अपने भीतर लिखा हुआ है। ऐसा विपश्यना का विद्यार्थी काम शुरू करते ही इस बात को समझ करके करता है कि अपने भीतर जो सच्चाई है उसके सहारे काम करना है। सच्चाई तो जो बाहर है वही भीतर है, फर्क कुछ नहीं, قدرت کا جو قانون باہر کام کرتا ہے وہ بھیتر کام کرتا ہے، قدرت کا جو قانون میرے پڑوسی پر کام کرتا ہے وہی مجھ پر کام کرتا ہے، کوئی انتر نہیں۔ لیکن باہر جو قدرت کا قانون ہے اس کو میں کیول بدھی سے سمجھ سکتا ہوں، انٹلیکچولی سمجھ سکتا ہوں، ترک وترک کر کے سمجھ سکتا ہوں، انبھوتی کر کے نہیں۔ ستیہ کو انبھوتی کر کے سمجھنا ہو، دھرم کو انبھوتی کے استر پر سمجھنا ہو تو اس 3.5 ہاتھ کی کایا کے بھیتر ہی سمجھ سکتے ہیں، باہر کدھاپی نہیں۔ تو اپنے بھیتر کیا ہو رہا ہے، تو اپنے بھیتر کی سچائی کو جاننے کے لیے پھر سنت کہتا ہے کہ باہر بھیتر ایک سچ ہے، باہر بھیتر ایک جانو یہ گرو گیان بتائی رے۔ ہر سدگرو ہوگا تو یہی گیان دے گا، کیونکہ سدگرو ہے، ستیہ کا گرو ہے، تو کہے گا کہ جو قانون باہر کام کرتا ہے وہ بھیتر کام کرتا ہے، یہ سچائی اس نے بتائی، اس نے انبھو کی بتا دی۔ لیکن جن نانک بن آپا چینے کٹے ن بھرم کی کائی رے۔ جن نانک، نانک جان گیا ہے، ماننے کی بات نہیں، گرو نے کہا اور ششیہ نے مان لیا تو رہ گیا بندھن میں پڑا رہ گیا، گرو نے کہا اور ششیہ نے جان لیا، جیسے گرو نے جانا ویسے ششیہ نے جان لیا، کلیان ہو گیا۔ تو نانک کہتا جنی نانک، میں جان گیا ہوں بھائی، میں نے بھی گروؤں سے سنا ہے لیکن میں جان گیا ہوں، جنی نانک بن آپا چینے، اپنے آپ کے بارے میں جو سچائی ہے اس کی کھوج کیے بنا کٹے نہ بھرم کی کائی رے۔ سارا جیون بھرم میں بیت جائے گا، بھرانتی میں بیت جائے گا، غلط فہمی میں بیت جائے گا، سچائی دور ہی رہ جائے گی۔ تو اپنے آپ کی کھوج کرنی ہے، اس کے لیے سچیارا بننا ہوگا۔ آدی سچ جگادی سچ ہے بھی سچ، نانک ہو سی بھی سچ۔ سچ سے شروع کریں اور قدم 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 بڑھتے چلے جائیں، جو سچ پہلے آئے گا سامنے بڑا ستھول ہو کر کے آئے گا، اس سے اگلے کشن، اس سے سوکشم، اس سے سوکشم، سوکشم تر سوکشم تر سوکشم تم ستیہ، اس بھوتک شریر کا سوکشم تم ستیہ سامنے آ جائے گا۔ ایک ایک ننے ننے پرمانوں سے بنا ہوا شریر، ایک ایک ننے ننے پرمانوں کا نرتن سامنے آ جائے گا، ایسی اوستھا آئے گی، چت سارا کا سارا اس کے سارے اسکند سمجھ میں آنے لگیں گے، انبھوتی پر اتر جائے گا۔ یہ ستھول سے سوکشمتا تک جاتے 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 پھر چت اور شریر کے پرے، اس بھومی کا اتکرمن کر کے، شریر اور چت کی سیما کو پار کر کے اس نتیہ شاشوت دھرو کا ساکشاتکار ہو جائے گا۔ وہ جو اندریاتیت ہے، جو لوکاتیت ہے، جو بھواتیت ہے، ساکشاتکار ہو جائے گا، انبھوتی پر اترے گا، اس کی کوئی مانیتا نہیں۔ تو کام تو ستھول سے شروع کرنا پڑے گا، وہ بھلے کتنا ہی ستھول کیوں نہ ہو، ستیہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ تو اپنے بارے میں کیا سچائی ہے، اس کے لیے جس ویکتی کو ایسا کام کرنا ہوتا ہے وہ کسی طرح کے لیپ نہیں لگاتا۔ تو پھر سنت کہتا ہے وپشنا کی بات کہ تھا پیا نہ جائی او کیتا نہ ہوئی، تھا پیا نہ جائی کیتا نہ ہوئی، آپو آپ نرنجن سوئی۔ تھا پیا نہ جائی، جو ستیہ پرگٹ ہوا اس پر کچھ اور ستھاپت مت کر دینا، نہیں تو بھٹک جاؤ گے۔ ہماری یہ مانیتا، ہماری یہ مانیتا، ہماری ایسی پرمپرا، ہماری، جہاں تھوپنا شروع کیا بھٹک گئے۔ تو تھا پیا نہ جائی اور کیتا نہ ہوئی، کچھ نیا کریٹ نہ کرنے لگا، تم کچھ نہیں کرنے والے، کرتا بھاؤ بھی سماپت ہو جائے، بھوکتا بھاؤ بھی سماپت ہو جائے، کیول درشتا بھاؤ ہے، گھٹنا گھٹ رہی ہے اور اسے جان رہا ہوں، یہ بھی آگے جا کر کے جان رہا ہوں سماپت ہو جائے گا، ہوں نکل جائے گا، جانا جا رہا ہے یہ رہ جائے گا، میں بھی سماپت ہوگا، سمے پا کر ہوگا۔ تو درشتا بھاو آئے، ساکشی بھاو آئے، تٹستھ بھاو آئے، ہم کچھ نہیں کر رہے، گھٹنا اپنے آپ گھٹ رہی ہے، آپو آپ نرنجن سوئی، جو اپنے آپ پرگٹ ہو رہا ہے وہی ایشور ہے، وہی پرماتما ہے، کیونکہ وہ ستیہ ہے اور وہ نرنجن ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا۔ انجن ماہی نرنجن دیکھو، آنکھوں سے جو دکھ رہا ہے یہ شریر، اس کے بھیتر اس نرنجن کو دیکھو جو ستیہ ہے، اور آگے بڑھتے بڑھتے پرم ستیہ کا روپ دکھا دے گا۔ تو سچائی کے سہارے، جس میں بنا ہی کسی افرٹ کی اپنے آپ کیا ہو رہا ہے، افرٹ لیس آبزرویشن ہے، اپنے آپ کیا ہو رہا ہے، جو کچھ اپنے آپ ہو رہا ہے، बस उसी को जानते चले जाएं। चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन, हम ये देखना चाहेंगे, हम वो देखना चाहेंगे, नहीं चलेगा। इस क्षण क्या प्रकट हुआ, चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन, एफर्टलेस ऑब्जर्वेशन, यही विपश्यना है। तो इसका काम शुरू करने वाला व्यक्ति जब मन को एकाग्र करने का काम शुरू करता है तो उसको किसी एक एकांत स्थान में, ऐसे स्थान पर जहां बाहर की कठिनाइयां, बाहर की बाधाएं कम से कम हो, बाहर के विघ्न कम से कम हो, ऐसा कोई स्थान हो। आगे जमाने में बहुत तपोभूमियां हुआ करती थी, अब तो खोद ही हम लोगों ने अब शुरू हुई हैं, अच्छी बात है। कोई तपोभूमि हो जहां पर सिवाय तप करने के और कोई प्रवृत्ति नहीं होती हो, ऐसे शांत जगह जाकर के सीखे। क्या करे, आंख बंद करके बैठ गया, पालथी मार के, साढ़े तीन हाथ की काया में जो घटना घट रही है बस वहीं से काम शुरू कर। तो क्या घटना घट रही है, तो देखेगा ये सांस भीतर आ रहा है, ये सांस बाहर जा रहा, बस मिल गया सूत्र, मिल गया, इस सूत्र के सहारे आगे चल। तो नासिका के दरवाजों पर, क्यों भगवान ने कहा नासिका के दरवाजों पर, कि अंदर जाना है, ये देहली है शरीर की हमारी, इस देहली पर खड़ा होना तो सीखें, पहले डगमगाता है मन कितना, यहां तो खड़ा होना सीखें, यहां खड़ा होना आ जाएगा तो फिर भीतर जाकर के सारा कुछ देख लेंगे, कुछ अनदेखा नहीं रह जाएगा। तो यहां सीख, तो यहां खड़ा होते ही पहली बार द्वारपाल की तरह यहां खड़ा कर दिया मन को, खड़ा रहे यहां पर संतरी की तरह, क्या हो रहा है, इन दरवाजों में से कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, देखता रहे। तो ये सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सहज स्वाभाविक सांस, कहीं सांस की कसरत नहीं शुरू कर दें, सांस पर नियंत्रण करना नहीं शुरू कर दें, वो बिल्कुल अलग विधि है, उसकी निंदा नहीं, प्राणायाम का अपना लाभ है, लेकिन ये विद्या जो अपने बारे में सच्चाई जानने का काम कराएगी, उसका प्राणायाम से लेन देन नहीं, दूर परे का भी लेन देन नहीं। सहज स्वाभाविक सांस अगर गहरा है तो बस इतना ही जाना कि यह गहरा है, छिछला है तो जाना छिछला है, बाईं नासिका से गुजरता है तो बाईं से गुजर रहा है, दाहिनी से गुजरता है तो दाहिनी से गुजर रहा है, दोनों से गुजरता है तो दोनों से गुजर रहा है, बदलने की जरा सी भी कोशिश नहीं करेंगे, कीता न हुई, कोई क्रिएटेड ट्रुथ नहीं, अपने आप नेचुरल ट्रुथ जो प्रकट हो रही है उसी को हम जानेंगे, और इम्पोज कुछ नहीं करेंगे। इसके साथ कोई शब्द बोलना शुरू कर दें, कोई शब्द बोलना शुरू कर दें, कोई आकृति का ध्यान करना शुरू कर दें, सांस को भी जान रहे हैं और वो भी आलंबन है, फिर भटक जाएंगे, कुछ नहीं, केवल सांस, शुद्ध सांस, नैसर्गिक सांस, सहज स्वाभाविक सांस, जैसे आ रहा है जान रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, जान रहे हैं जा रहा है, आसान काम है, कुछ करना ही नहीं, हमें अपने आप हो रहा है, हम तो केवल एक दृष्टा की तरह, साक्षी की तरह तटस्थ भाव से यहां बैठे रहें और घटना घट रही है उसको देखते रहें। तटस्थ किसको कहते हैं, कि नदी के तट पर एक आदमी बैठा है, तट पर स्थित है इसलिए तटस्थ है, और नदी बह रही है, नदी के बहाव में उसका कोई हाथ नहीं, नदी तेज बहती है तो देखता है तेज बहती है, धीमे बहती है तो धीमे बहती है, नदी का पानी बड़ा गंदा है तो गंदा है, स्वच्छ है तो स्वच्छ, वो कुछ नहीं करता, तट पर बैठा देख रहा है। इससे आसान काम दुनिया में क्या होगा, सबसे आसान काम। लेकिन जब आओगे 10 दिन के किसी शिविर में तो पता लगेगा, पहले ही दिन ऐसा जी घबराएगा, अरे किन की बातों में फंस गए हम, घर भागने को जी चाहेगा, 2 सांस भी नहीं देख पाओगे कि मन ये भागा, 2 सांस भी नहीं देख पाओगे ये भागा, फिर भीतर बड़ी चिड़चिड़ाहट होगी, बड़ा क्रोध आएगा, अपने आप पर ही आएगा कि अरे कैसा मन लिए चल रहा हूं, ये क्या मुश्किल काम है, सांस आ रहा है जा रहा है उसको जानना है बाबा, और कुछ नहीं, सांस की कसरत नहीं, उस पर कोई मेहनत नहीं, कुछ करना नहीं, अपने आप हो रहा है, आपो आप निरंजन सोई, हमको इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, फिर भी भागता है, कैसा मन है। तो समझाने वाला समझाएगा, जो मार्गदर्शक, अरे नहीं नहीं क्रोध नहीं करना भाई, क्रोध चाहे अपने आप पर कर चाहे किसी दूसरे पर कर, क्रोध तो क्रोध है, व्याकुलता ही लेकर के आएगा, ये आदत तो बहुत पुरानी है तुम्हारी, वही आदत छोड़ने आए ना। तो कहता बहुत मन भागता है, मैं क्या करूं, तो मार्गदर्शक कहेगा उस बात को स्वीकार कर, मेरा मन भाग गया, इस क्षण मेरा मन भाग गया, बस इस क्षण की यह सच्चाई है। इतने में सांस पर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, सांस तो है ही ना, कायम है, सांस तो खत्म नहीं हो गया, फिर सांस पर लग गए, फिर मन भाग गया, होश आया, अरे फिर मन भाग गया, फिर सांस पर आ गए, बस यही करना है। यूं करते 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 बहुत से रहस्य प्रकट होने शुरू हो जाएंगे, अपने बारे में, अपने मन के बारे में बहुत से रहस्य प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। एक तो ये रहस्य कि हमने जो सांस का आलंबन लिया, भगवान बुद्ध ने केवल शुद्ध सांस का आलंबन दिया, क्यों दिया, ये बात बड़ी जल्दी समझ में आने लगेगी। हमारे सांस का केवल हमारे शरीर से संबंध नहीं है, ऊपर ऊपर से यूं लगता है कि ये सांस तो शरीर की एक प्रक्रिया है, इन फेफड़ों के जरिए आती है, पंपिंग होता है, आता है जाता है, इसका शरीर से संबंध है। लेकिन जैसे जैसे सांस को देखते देखने की आदत बनती चली जाएगी, वैसे वैसे देखेगा इस सांस का हमारे चित्त से, हमारे मन से बहुत गहरा संबंध है, और मन के विकारों से तो और गहरा संबंध है। क्योंकि देखिएगा, ध्यान करते करते कोई बात याद आई और बड़ा गुस्सा आ गया, मन ही मन गुस्सा आया और देखिएगा सांस तेज हो गया, और वो गुस्सा दूर हुआ फिर सांस स्वाभाविक हो गया। मन में भय आया, सांस तेज हो गया, भारी हो गया, भय निकला। कोई विकार मन में जागे, सांस अपनी स्वाभाविकता खो देता है। ये सच्चाई पढ़ी पढ़ाई नहीं, सुनी सुनाई नहीं, अनुभूति वाली हमारे सामने आई कि देख मेरे सांस का मेरे विकारों से कितना गहरा संबंध है, और मुझको तो अपने विकारों की जड़ों तक जाना है, उनको निकाल बाहर करना है, इसलिए भगवान ने शुद्ध सांस का सहारा मुझे दिया। करना कराना कुछ नहीं, जहां करने लगेंगे वहां गहराइयों तक नहीं जा पाएंगे, आपो आप जो हो रहा है उसको देखे जाएंगे। फिर एक दो दिन बीतते बीतते और एक बात सामने आएगी अपने ही बारे में, ये मन भागता तो बहुत है, कहां भागता है भाई, तो कितनी जगह भागता है, कोई डायरी लिख ही नहीं पाई इतनी जगह भागता है। एक क्षण यहां भागा तो एक क्षण वहां भागा, तो बंदर की तरह एक डाल छोड़ी कि दूसरी पकड़ी, एक डाल छोड़ी कि दूसरी पकड़ी, क्या हालत बना रखी है, कैसे उसको नोट करेगा, नोट करने भी नहीं देते, कोई डायरी लेकर नहीं आ जाना वहां पर, किसी को डायरी नहीं रखने देते। लेकिन एक बात समझ में आ जाएगी बड़ी जल्दी कि इसको भागने के लिए दो ही क्षेत्र हैं जहां भागता है, या तो भूतकाल में भागता है। ये बात याद आई कि वो बात याद आई, ऐसा हुआ था, और फिर छलांग लगाता है भविष्य में, ऐसा करेंगे, ऐसा ना हो जाए, फिर भूतकाल में ऐसा हुआ था। या तो भूतकाल में रमण करता है या भविष्य में रमण करता है। ये बात हम दृष्टा की तरह केवल देखते जाएंगे, उसको पलटने का काम नहीं करेंगे, उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपो आप निरंजन सोई, इस समय का यही ईश्वर है। हमको ईश्वर का साक्षात्कार करना है, हमको सत्य का साक्षात्कार करना है, हम केवल यही एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं। ये मन भागता है तो देखो भूतकाल में भागता है, भविष्य में भागता है, अपने आप समझ में आएगा जीना तो वर्तमान में है, और देखो इसने कैसी हालत बना ली अपनी। जब देखो तब भूतकाल, जब देखो तब भविष्यकाल, वर्तमान में जीता ही नहीं। वर्तमान की सच्चाई तो ये है कि सांस भीतर आ रहा है उसमें जीना नहीं चाहता, सांस बाहर जा रहा है उसमें जीना नहीं चाहता, वो तो भागेगा भूत में, भागेगा भविष्य में। ओ इसलिए व्याकुल है, इसको जीना नहीं आता, बस इतना समझ लिया, करना कराना कुछ नहीं। फिर देखेगा एक बात और सामने आएगी, भूतकाल में जब भाग गया या भविष्य में भाग गया तो किस प्रकार की चिंतन चले, अनेक प्रकार के चिंतन चले, उनके भी दो ही विभाजन होंगे। एक विभाजन होगा कोई प्रिय चिंतन चला, पुरानी कोई बात याद आई, बड़ी प्रिय याद आई, प्रिय बात याद आई, उसका चिंतन चला, या भविष्य की कोई बात याद आई, बड़ी प्रिय याद आई, उसका चिंतन चला। तो या तो प्रिय चिंतन चला, वो चाहे भूतकाल का हो या भविष्यकाल का हो, प्रिय चिंतन चला, और या अप्रिय चिंतन चला, भूतकाल की कोई ऐसी बात याद आई जो अपने को अच्छी नहीं लगी तो अप्रिय चिंतन चला, भविष्य का कोई ऐसा चिंतन हुआ जो अच्छा नहीं लगता अप्रिय चला। दो ही तरह के चिंतन चलते हैं, या तो प्रिय या तो अप्रिय। प्रिय चिंतन चलता है तो बड़ा सुखद लगता है, एक साइंटिस्ट की तरह देख रहा है, एनालिटिकल स्टडी कर रहा है, क्या क्या हो रहा है, इस माइंड मैटर का ये सारा फिनोमेना कैसे काम करता है इसकी स्टडी हो रही है। अच्छा, जब जब कोई प्रिय चिंतन चलता है तो मानस को बड़ा सुखद लगता है, जब जब अप्रिय चिंतन चलता है मानस को बड़ा दुखद लगता है, तब क्या होता है? जब जब प्रिय चिंतन चलता है और मानस को सुखद लगता है तो मानस के एक हिस्से में से बुदबुदे उठने शुरू होते हैं, अरे ये तो चाहिए, ऐसा तो और हो, ऐसा तो और चाहिए, चाहिए 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 की मुहार निकल पड़ती है भीतर। अप्रिय चिंतन चलता है और वो दुखद लगता है तो भीतर से बुदबुदे फूटने लगते, नहीं चाहिए, अरे ये तो नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं, ये फिर कभी ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। जब चाहिए चाहिए की मुहार नहीं चल रही है तो पुरानी भाषा में उसी को राग कहते थे, और जब नहीं चाहिए की मुहार नहीं चल रही है तो पुरानी भाषा में उसको द्वेष कहते थे। अब खूब समझ में आने लगा, प्रतिक्षण कोई ना कोई विचार चल रहा है, और वो विचार सुखद है तो उसके प्रति राग जाग रहा है, दुखद है उसके प्रति द्वेष जाग रहा है, कैसा मानस है मेरा? प्रतिक्षण राग रंजित रहता है, प्रतिक्षण द्वेष दूषित रहता है, और ऊपर ऊपर से मैं इस धोखे में हूं कि बड़ा धर्मवान हूं मैं, प्रतिक्षण एक क्षण नहीं छूटता, जब देखो तब कोई चिंतन सुखद है तो राग जगाया जा रहा है, कोई चिंतन दुखद है तो द्वेष जगाया जा रहा है, तो राग द्वेष विकार ही विकार, विकार ही विकार। ऊपर से क्योंकि उस मंदिर में चला गया, उस चैत्य पर चला गया, उस गिरजाघर में चला गया, उस मस्जिद में चला गया, ये कर्मकांड कर लिए, वो कर्मकांड कर लिए, ये पूजा कर ली, ये दोष नहीं है उनमें, वो अपनी जगह है, लेकिन उनसे हमारे गहराइयों के विकार निकल जाए ये असंभव बात है, क्योंकि गहराइयों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, निकालेंगे कैसे। तो वो सारा कुछ यूं कर करा करके अपने आप को धर्मवान मानने वाला व्यक्ति अब समझने लगेगा, अगर होश वाला है, समझदार है, जल्दी समझ जाएगा। बेहोशी में बहुत डूबा हुआ है तो कुछ शिविर लेने के बाद समझ जाएगा कि मेरे में धर्म का नामो निशान नहीं है, मैं जब देखो तब राग रंजित रहता हूँ, जब देखो तब द्वेष दूषित रहता हूँ, और जब तक राग द्वेष का पुतला हूँ तब तक अधर्म ही अधर्म है, और इसके बाहर निकलने का आगे क्या रास्ता है इस पर कल चर्चा करेंगे। तो सांस का काम इसलिए शुरू किया कि चित्त एकाग्र होने के साथ साथ उसको निर्मल होना भी आ जाए, केवल एकाग्र हो जाए और निर्मल नहीं हो तो हमारा काम नहीं बना। कि सारा का सारा लक्ष्य अपने आप को जानने का लक्ष्य इसीलिए है कि भीतर कितना मैल भरा पड़ा है और कितना मैल जगाए जा रहे हैं, प्रतिक्षण जगाए जा रहे हैं, तो इस ढेर को बढ़ाए जा रहे हैं, तो जितना मैल बढ़ाए जा रहे हैं उतना दुख बढ़ाए जा रहे हैं, अपने लिए दुख का संपादन किए जा रहे हैं, उसका संवर्धन किए जा रहे हैं, कहाँ शांति, कहाँ चैन, निकम्मी बात ना, अपने आप को धर्म के नाम पर धोखे में रखे हुए ना, ये बात खूब समझ में आने लगेगी। कल जरा और इसकी आगे चर्चा करेंगे, परसों देखेंगे कि कैसे इसे जीवन में उतारें। लाभ तो तभी होगा जब जीवन में उतरे, धर्म की केवल चर्चा करके रह जाए, उसे केवल वाणी विलास का विषय, उसे केवल मनोरंजन का विषय, श्रुति विलास का विषय बना के रह जाए, तो भाई घंटे भर सिनेमा में रहे कि घंटे भर धर्म सभा में रहे क्या फर्क पड़ा। धर्म सभा में आए हैं, सुना है, धर्म की बात अच्छी लगी है तो प्रेरणा जा गई कि हमें चक्कर देखना है, ये तो सुनी सुनाई बात है, ये तो पढ़ी पढ़ाई बात है, ये तो ये कहते हैं, ये तो परंपरा कहती है, ये तो भगवान बुद्ध ने कहा, ये तो अमुक भगवान ने कहा, कहा मैंने तो चखा नहीं ना, तो मुझको चख के देखना है। कल्याण तभी होगा जबकि धर्म जीवन में उतरेगा, और जीवन में तब उतरेगा जबकि धर्म का दर्शन करना सीख जाएंगे अपने भीतर। ये लॉ ऑफ नेचर है, इस तरह ये वर्क करता है, और इस कदर हम अपने जीवन को इस लॉ ऑफ नेचर के अनुसार ढाल सकते हैं, धर्म के अनुसार ढाल सकते हैं, अरे सचमुच बड़ा मंगल होगा। एक व्यक्ति का नहीं, दो व्यक्ति का नहीं, सारे विश्व भर में फैले हुए आज के युग में हजारों लोगों का अनुभव है, जीवन बदल जाता है, अपने को बड़ा सुखी मानने वाला व्यक्ति इसमें से गुजरता है, अरे एकदम बदल गया। अपने को दुखी मानने वाला तो बदलेगा ही, जो अपने को इस धोखे में कि मैं बहुत सुखी हूं क्योंकि बहुत धनी हूं, एकदम बदल जाएगा। हर व्यक्ति को सुधार की स्कोप तो है ही ना, तो जहां से जो है वहीं से आगे बढ़ेगा, बड़ा मंगल कर लेगा, बड़ा कल्याण कर लेगा। जो जो आज की धर्म की सभा में आए सबके मन में खूब प्रेरणा जागे, प्रेरणा जागे, और भीतर धर्म का दर्शन करने के लिए समय निकालें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्ति मुक्ति हो, स्वस्ति मुक्ति। वेजिटेरियन फूड इज कंपल्सरी और नॉट फॉर ए विपश्यना मेडिटेटर। वी डोंट इंपोज एनीथिंग ऑन अदर्स, बट फॉर 10 डेज व्हाइल यू कम हियर टू लर्न दिस टेक्निक, सर्टनली वन हैज टू रिमेन वेजिटेरियन ड्यूरिंग दोज 10 डेज। आपका संदेश है कि संतोष ले लो, ज्यादा पाने के लिए न तड़पो, ज्यादा चाहना मत करो। मैं शहर में किराए पर रहता हूँ, मेरे साथी लोगों ने अपना मकान बना लिया, मेरी भी चाहना है कि मेरा अपना मकान हो, इसके लिए रात दिन भटक रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मैं संतोष लेकर बैठूँ तो मेरा मकान नहीं बनेगा, मैं क्या करूँ। एक ही रास्ता है, विपश्यना करो। विपश्यना तुम्हें अकर्मण्य नहीं बना देगी, विपश्यना खूब काम करने की ताकत देगी, इतना कर्मठ बनाएगी जितना काम कभी नहीं करते थे उतना करोगे, लेकिन व्याकुलता निकल जाएगी, आसक्ति निकल जाएगी। मकान बनाने के लिए सारा प्रयत्न करोगे, नहीं बना तो मुस्कुराओगे, अरे नहीं बना नहीं बना, फिर दूसरी तरह से प्रयत्न करोगे, फिर नहीं बना नहीं बना, हम तो मुस्कुराएंगे। हर अवस्था में मुस्कुराना आ जाएगा तो जीना आ जाएगा, धर्म जीवन जीने की कला है। किसी भक्ति धर्म के विपरीत चल रहा है, कोई व्यक्ति धर्म के विपरीत चल रहा है उसे धर्म के पथ पर लाने के लिए दंड देना पड़ता है, इससे उसके सुख में हानि पहुंचती है, तो दंड किस प्रकार का दें? कोई दंड देने से सुधरता नहीं, दुनिया में कोई सुधरा नहीं। बड़े प्यार से, बड़े मैत्री से उसे उसका दोष बताया जाए, उसे सही रास्ता बताया जाए और जाग जाए उसके मन में, अच्छा तो ट्राई तो करके देख, 10 दिन भाई तो करके तो देख, यूं करते 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 अपने आप सुधर जाते हैं लोग, बहुत सुधर जाते हैं। संगठन को सर्वोपरि मानकर उसके विकास को ही अपना लक्ष्य समझकर चलने वालों के साथ अगर अपने श्रद्धेय लोगों से ही ठेस पहुंचे तो श्रद्धा और आस्था के प्रति घृणा के भाव उभर कर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। अपनी हानि होती है भाई, जब जब घृणा पैदा करते हो तो जिस व्यक्ति पर घृणा पैदा की है उसका तो कुछ बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा हम नहीं जानते, हो सकता कुछ नहीं बिगड़े, अपना तो बिगाड़ हो ही गया। जैसे ही घृणा पैदा की वैसे ही व्याकुल हो गए, कुदरत ने दंड देना शुरू कर दिया। तो इस घृणा से बचें। कोई व्यक्ति में कोई दोष देखते हैं तो उसके प्रति मैत्री जागे, करुणा का भाव जागे, उसे हम हर तरह से समझाने की कोशिश करें, करुणा का भाव लेकर के, घृणा का भाव लेकर के नहीं। आपका ज्योतिष के बारे में क्या विचार है? भाई ज्योतिषियों की दुकान हम बंद तो नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें, हर व्यक्ति अपना मालिक है। हमारा ज्योतिष नक्षत्र चाहे सो कहता रहे, हम उसको एकदम बदल सकते हैं, भविष्य हमारे हाथ में है। अत्ता ही यत्तनो नाथो अत्ता ही यत्तनो गति, हमारी गति हम बनाने वाले हैं। सदगति बना सकते हैं, दुर्गति बना सकते हैं, सारी गतियों के प्रति मोक्ष अवस्था तक पहुँच सकते हैं। ड्यूरिंग एन इलनेस, If I get 2 weeks to sit for 1 hour meditation, can I meditate in lying down position? Certainly. In whatever position you can, you should meditate. If you are a meditator of Vipassana every day, morning or evening, if you are ill, then you should give more time for meditation. During the 1 hour meditation period at home, if there is a disturbance, like a phone call or call from a visitor, should we break the meditation and attend the call, or should we ignore the call till the completion of the meditation period? Whatever the disturbance may be, the main thing is don't get irritated. Otherwise, you are not doing Vipassana. You have not understood what Vipassana is. A phone call has come and you generate anger or aversion towards this phone call. You are not doing Vipassana. You may keep on sitting for hours together. So have love and compassion. If you feel, well, this person might have some important reason for telephoning me, all right, I get up and answer the call and then again sit and meditate, but no aversion, no anger. You had said that one should spend a part of one's income in the form of a donation, but does not it indirectly take place when one pays income tax to the government? There you are forced to pay. You have to pay. But when you give willingly to people who are needy, then this is real giving. This is sambibhaga. This is real dana. Aapke kal ke pravachan anusar, परमात्मा और प्रकृति एक ही है और उनके नियम सनातन है, अपरिवर्तनीय है। अब मेरा प्रश्न ये है कि जहाँ बौद्ध धर्म के सिवाय दूसरे धर्म परमात्मा को ईश्वर माना जाता है, क्या आपके तात्पर्य प्रकृति को ईश्वर मानना है? और फिर ये प्रकृति, ये परमात्मा की उत्पत्ति कैसे हुई? फिर कोई पूछेगा उस परमात्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, उस परमात्मा को उत्पन्न करने वाले की उत्पत्ति कैसे हुई? अरे जंजाल में क्यों पड़े भाई, प्रतिक्षण उत्पत्ति कर रहे हो ना, अपने भव संसार की उत्पत्ति कर रहे हो। भीतर राग जगाते हो तो अपना भव संसार तैयार होता है, द्वेष जगाते हो भव संसार तैयार होता है। तुम ही अपनी सृष्टि का निर्माण करने वाले हो, इस बात को देखो भीतर, आप ही समझ में आ जाएगा। अपने आप या किसी माध्यम द्वारा, यदि यह अपने आप हुआ तो कैसे हुआ? प्रतिक्षण हो रहा है अपने भीतर, ये देखो। इसका आदि क्या है वो केवल कल्पनाओं में डूब के रह जाओगे, मान्यताओं में डूब के रह जाओगे, क्योंकि उसका अनुभव तुम नहीं कर सकते। इस वक्त जो हो रहा है उसका अनुभव कर सकते हो, और सत्य का अनुभव करने पर ही वो सत्य है, अन्यथा कोरी मान्यता है। आदमी को झूठ के सहारे कर्म करना नहीं चाहिए, लेकिन नेपाल में ऐसा बहुत लोग हैं जो मन में एक और बाहर अनेक शब्द जाल कर छोड़कर तमाम काम करवाते हैं। अरे नेपाल में नहीं, सब जगह इस तरह हैं, खाली नेपालों क्यों बदनाम करो, सभी जगह इस तरह के लोग हैं। ऐसा बहुत सफल लोग हैं मगर जो आदमी भीतर बाहर कोई फर्क नहीं रख सकता, भले हो सीधे हो लेकिन अपने कार्य में सफल नहीं हो रहा, क्या इसकी वजह जान सकता हूँ? सच के साथ साथ व्यवहार कौशल्य चाहिए। हमको कैसे व्यवहार करना है? हम सच के मायने में अपने आप भीतर देखना भूल जाएं तो हम धोखे में ही रह जाएंगे, फिर मार खाते चले जाएंगे। और विपश्यना करेगा तो किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? गलत काम भी नहीं करेगा पर व्यवहार की कुशलता आ जाएगी, किस तरह का व्यवहार कैसे करना चाहिए, सफलता मिलेगी, शांति के साथ मिलेगी। जो आदमी दुष्कर्मों से समझता है कि मुझे सफलता मिल गई, धन संपन्न हो गया, शक्ति संपन्न हो गया, उसके पास शांति नहीं आई, उसके पास सुख नहीं आया। विपश्यना सफलता भी देगी और सुख शांति भी देगी। जैसे क्राइस्ट के नाम से क्रिश्चियन धर्म का नामकरण हुआ, क्या वैसे ही बुद्ध के नाम से बुद्ध ने प्रतिपादित किया धर्म को बुद्ध धर्म कहा गया कुछ और कारण से? बुद्ध ने कोई बुद्ध धर्म नहीं सिखाया। एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर बुद्ध हो जाता है और वो लोगों को बौद्ध धर्म समझाता है, सिखाता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति बुद्ध नहीं हुआ। अभी इसके मन में लालसा है, एक तृष्णा है कि एक संप्रदाय मेरे नाम का भी चले, जो सदियों तक मेरी जय जयकार करता रहे, मेरी मूर्तियां बना करके पूजा करता रहे, पाठ करता रहे, मुझे नमस्कार करता रहे, ऐसा एक संप्रदाय तैयार होना चाहिए और वो संप्रदाय बड़े से बड़ा होना चाहिए। ऐसी लालसा जिस व्यक्ति के मन में है वो व्यक्ति अभी मुक्त नहीं हुआ, अभी अरंत नहीं हुआ, अभी बुद्ध नहीं हुआ। बुद्ध धर्म सिखाता है, बौद्ध धर्म नहीं सिखाता, धर्म सिखाता है। और जो व्यक्ति उसका पालन करते हैं उनको कहता है ये धम्मिको, माने धार्मिक है, धम्मठो धर्मिष्ठ है, धम्मचारी धम्म विहारी या धम्मी धर्मी है, यही पांच शब्द इस्तेमाल करता है, कहीं भी बौद्ध शब्द। भगवान बुद्ध के अनुसंधान करने वालों ने बताया हमें कि भगवान बुद्ध के 500 बरस तक एक व्यक्ति ने, उनके एक अनुयायी ने अपने आप को बौद्ध नहीं कहा। 500 बरस के बाद ये शुरू हुआ बौद्ध, क्योंकि बहुत से लोग अपने को हिंदू कहने लगे, जैन कहने लगे, तो या तो उन्होंने बौद्ध नाम दिया या इन्होंने अपने आप धर लिया, वो तो इतिहास के अनुसंधान की बात है। लेकिन अपने आप को नाम चाहे सो रखे, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, भले बौद्ध ही कहते रहें, अपने आप को जैन कहते रहे, हिंदू, धार्मिक बने, धम्मिको धम्मठो धम्मचारी धम्म विहारी, ये बुद्ध की शिक्षा। निर्वाण क्या है? अनुभव से जानोगे भाई, कोई निर्वाण को शब्दों में समझा सके? इंद्रियातीत अवस्था है, उसकी अनुभूति तब होती है जब इंद्रियां काम करनी बंद कर देती। साधना करते 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 एक अवस्था आती है जब सारी इंद्रियां ठप हो गई, कुछ नहीं काम करती, तब इंद्रियातीत निर्वाण अवस्था की अनुभूति होती है। एक क्षण के लिए हो, 10 क्षण के लिए हो, कुछ सेकंडों के लिए हो, कुछ मिनटों के लिए हो, कुछ घंटों के लिए हो, फिर इंद्रिय जगत में आता है और वैसे सारे काम करता, आदमी बदल गया एकदम, एक बार उसकी अनुभूति होगी बदल गया। लेकिन वो अनुभूति क्योंकि इंद्रियों के परे की अनुभूति है, इंद्रियों के शब्दों में नहीं समझाई जा सकती, न कोई इंद्रियों द्वारा उसे समझ सकता है, वो तो अपने अपने अनुभव से ही जाना जा सकता है। विपश्यना शब्द का अर्थ और पर्याय बताइए। विशेषेन पश्यति इति विपश्यना, विशेष रूप से देखता है। जब तक भोक्ता भाव है, जब तक कर्ता भाव है, तब तक विपश्यना नहीं है, तटस्थ भाव है। और जो कुछ प्रकट सत्य सामने आ रहा है उसके टुकड़े कर करके, उसके विश्लेषण कर करके, विभाजन कर करके पञ्यति थपित्वा विशेषेन पश्यति इति विपश्यना, प्रकट सत्य को, भासमान सत्य को दूर करके परमार्थ सत्य की ओर बीनता हुआ चला जाए, ये विपश्यना है। आगे कल परसों इसे और समझेंगे। हमारे मन में काम वासना क्यों जागती है? क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति काम वासना से हुई। हर व्यक्ति की उत्पत्ति माता पिता की काम वासना से हुई, इसलिए उसकी जड़ें हैं भीतर, और अनेक जन्मों से अपनी जड़ें भी हैं, वो निकलने में देर लगती है। लेकिन विपश्यना की यही खूबी है कि जड़ों से निकाल देगी और इसी जीवन में निकाल देगी। काम करना चाहिए, बिना काम किए नहीं होता। आपने कहा कि प्राणी हत्या करने से पहले सबसे पहले अपने मन में क्रोध द्वेष जगाना पड़ता है, पर कसाई ने जब पहली बार हथियार उठाया तो क्रोध जगाया ही, द्वेष जगाया ही, करते 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 ऐसा पत्थर की तरह हृदय हो गया उसका, और वो लकीरें इतनी पत्थर की तरह गहरी जाती चली गई कि अब उसे लगता नहीं क्रोध जगाया है, लेकिन अंतर मन में वही स्वभाव बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव को पलटने में बहुत समय लेता है, बहुत समय लेता है, बड़ी कठिनाई होती है। विपश्यना करेंगे तो ये बात खूब समझ में आएगी। विपश्यना भावना और समत भावना में क्या अंतर है? चित्त को किसी एक आलंबन पर स्थित कर देना, उसे पुरानी भाषा में समत कहते थे, समाधि कहते थे, ध्यान कहते थे, और समग्रता में सारे शरीर के भीतर जो जो सच्चाइयां प्रकट हो रही हैं उनको विशेष रूप से देख रहा है, उनके ज्ञान के द्वारा उनका दर्शन कर रहा है, उनके स्वभाव का दर्शन कर रहा है, तो विपश्यना हो गई। मार्गदर्शन कैसे होता है? मार्ग पर चलने से होता है। मार्ग तो कहीं दूर हो और हम घर बैठे उसका दर्शन करना चाहें तो कैसे होगा? मार्ग अंदर ही है, अंदर दर्शन शुरू कर दोगे मार्ग खूब दिखने लगेगा। विकार रोकने और अंत करने के लिए क्या करना होगा? विपश्यना करनी होगी, कल समझाएंगे, और आके पूरी बात तो तब समझ में आएगी जबकि जीवन के 10 दिन इस विद्या को अर्पित करोगे। दुख क्या है, दुख कैसे होता है, ये सारा समझ में आएगा। अपने भीतर देखोगे तो पता लगेगा प्रति क्षण दुखी ही दुखी है। बाहर से अपने को 1000 सुखी मानने वाला आदमी भीतर देखेगा जरा भी समता नहीं है, संतुलन नहीं है, बड़ा बेचैन है, बहुत ही अशांत है, यही दुख है, और वो इसलिए है कि विकार जगाया जा रहा है। ऐसा अपने अनुभव से जानेगा, नहीं तो बुद्ध ने कहा इसलिए मान ले तो काम की बात नहीं हुई। सब धर्म एक ही है आपने कहा, लेकिन बुद्ध धर्म वाहक और सब धर्म में आत्मा नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है। होगी भाई, मैं कहता हूँ आत्मा नित्य हो, शाश्वत हो, ध्रुव हो, अथवा नहीं ही हो, क्या फर्क पड़ता है? एक बात कहता हूँ बार बार कि ऐसे देश में जन्मा मैं और अपने जीवन के बहुत से वर्ष उस देश में बिताए जहाँ 100 में से 80 लोग इस बात को नहीं मानते कि हमारे भीतर कोई अलग थलग आत्मा है, वो इस बात को नहीं मानते कि संसार को बनाने वाला कोई परमात्मा, नहीं मानते। और अब ऐसे देश में आया हूँ और यहाँ रहता हूँ, कई वर्ष बीत गए, 22-23 वर्ष बीत गए, जहाँ 100 में से 80 लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे भीतर एक अलग थलग आत्मा है और इस संसार को बनाने वाला एक परमात्मा है, दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न मान्यता वाले, और मैं निष्पक्ष भाव से दोनों को देखता हूँ, मुझको कोई फर्क नहीं लगता। दोनों एक जैसे पागल हैं क्योंकि एक जैसे दुखियारे हैं, वो भी इसी प्रकार राग जगाते हैं, द्वेष जगाते हैं, व्याकुल रहते हैं, ये भी राग जगाते हैं, द्वेष जगाते हैं, व्याकुल रहते हैं। मानने से क्या मिला भाई, और न मानने से क्या मिला? ये मानना और न मानना, मानना और न मानना झगड़े की जड़ है, इसमें नहीं जाओ। जानो आत्मा है तो जानो उसे, कहाँ है, है ना भीतर, तो टुकड़े कर करके देखो, होगी तो सामने आ जाएगी, और नहीं है, अनात्म है तो जानो भीतर, टुकड़े कर करके देखो, कल्याण हो जाएगा। अपनी सच्चाई को खुद देखना होता है, वो देखे बिना मानने लगे तो केवल दार्शनिक जंजाल में जीवन बीत जाएगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। विपश्यना भावना करने से सबसे पहले कौन ज्ञान प्राप्त होगा करके देखो, करोगे ही नहीं तो कौन ज्ञान प्राप्त होगा? बुद्धि विलास का ज्ञान हुआ ना, वो सम्यक ज्ञान कैसे होगा? मिथ्या ज्ञान होगा ना, विपश्यना मिथ्या ज्ञान को प्रोत्साहन नहीं देती। कल्याण मित्र के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए? विपश्यना करके पको उसमें, फिर मित्र बन जाओगे लोगों के, कल्याण में मित्र हो जाओगे। पहले अपना कल्याण कर लो, फिर औरों के कल्याण में खूब मित्र हो जाओगे। नेपाल में अभी अभी धर्म निरपेक्षता के नारे बहुत गूंज रही हैं। धर्म निरपेक्षता के नारे, धर्म सापेक्ष होना चाहिए, जीवन धर्म से भरा हुआ होना चाहिए। धर्म निरपेक्ष क्यों? संप्रदाय निरपेक्ष हो तो काम की बात हुई, धर्म निरपेक्ष नहीं। आई एम ए पर्सन विद फोकल एपिलेप्सी डिजीज सिंस 20 years। यस, पीपल हु गॉट दिस काइंड ऑफ डिजीज में कम, वी डोंट कीप दम अवे, बट देन दे मस्ट बी एन अटेंडेंट विद यू, somebody who has taken a 10-day course earlier should come to help you, to be with you, and then you can come, there is no restriction. क्या समाधि तक पहुंचने का सबसे अच्छा मार्ग विपश्यना ध्यान ही है? हमारे अपने अनुभव में तो है ऐसा, लेकिन हम अपनी बात किसी पर थोपे क्यों? हम कहते हैं सच्चाई को आजमा के देखो। हर दुकानदार अपने माल को अच्छा कहेगा, और हम दुकानदारों में से आए हैं, उस दुनिया में से आए हैं, तो बात मत मान लेना हमारी, ये कहीं धोखा दे देगा। व्यापारी आदमी रहा है ना तो बोलेगा मेरा माल ही अच्छा है, मेरा माल ही अच्छा है। नहीं, आजमा के देखो, खुद अजमा के देखो तब निर्णय करो अच्छा है कि नहीं। किसी के धोखे मत आओ, बातों के धोखे में नहीं आना। धर्म स्थिर है, निश्चल है, अक्षय है, अटल है और सार्वजनिक है, इसलिए इसमें सांप्रदायिक मानना नहीं हो भावना नहीं होना चाहिए। इसी तरह देश के शासन को चलाने वालों को राष्ट्रीय धर्म जनता को शांति और सुख प्रदान करने का होती है। होती तो है भाई, लेकिन दोष केवल उनमें ही देख के रह जाएं, अपना दोष नहीं सुधारें। शासन करने वाले कौन होते हैं? समाज के ही लोग तो आएंगे ना, और समाज सारा का सारा आवा बिगड़ा हुआ हो, सारा का सारा समाज ही इस तरह का हो, तो उसी तरह के लोग निकलेंगे। तो समाज को बदलें, एक एक व्यक्ति को बदलें, अपने आप सारी बातें बदल जाएंगी। किसी की केवल निंदा करने से कोई बात बनती नहीं। मुझे विचार में शांति और अहिंसा मानव जाति के लिए असंभव जैसा लगता है। हम नहीं कहते कि सारे मानव बिल्कुल शांत हो जाएंगे, लेकिन जितने हो जाएंगे उतना का तो कल्याण हो जाएगा। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, एक दीपक जला उसके आसपास तो प्रकाश हो जाएगा, फिर एक दीपक से दो जलेंगे, सो जलेंगे, हजार जलेंगे, उतना उतना प्रकाश हो उतना उतना तो कल्याण हुआ। सारा प्रकाश होगा नहीं इसलिए एक दीपक भी नहीं जलाएंगे, ये पागलपन की बात है। एक दीपक तो जलाएं, अपना दीपक तो जला लें, अपना कल्याण तो निश्चित है। मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया कि अपने फायदे के लिए दूसरे को दुख देना पाप है, ऐसा पाप नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन केवल बुद्धि से जान लेने से बात नहीं बनेगी भाई, इसके लिए अंदर देखोगे कि दूसरे की हानि करते हुए मैं अपनी हानि कर रहा हूं, पहले अपनी हानि को बचाऊं तब दूसरे का भला कर सकता हूं, ये भी प्रश्न से स्पष्ट होगा। चित्त को शांत करने के लिए मनुष्य को खान पान पहनना स्वच्छ वातावरण कितना असर करता है? बहुत असर करता है। लेकिन इसके लिए पहले एक विद्या ऐसी है, उसे सीख जाओगे तो अपने आप दूषित वातावरण से दूर रहना चाहोगे। जहाँ पर गंदे काम होते हों, जहाँ पर दूषित काम होते हों, वहाँ उनके बीच रहने को जी नहीं चाहेगा। धीरे धीरे उन पर प्रभावित होना शुरू हो जाओगे। अब तो जो गंदा वातावरण है वो हम पर छा रहा है, फिर धीरे धीरे हमारा बल बढ़ेगा तो हमारे अंदर की अच्छाई उस वातावरण को सुधारना शुरू कर देगी। अपना बल बढ़ाना आवश्यक है। फेंट अटैक टेकिंग मेडिसिन हाउ टू सॉल्व, विल डिस्कस विद दोज हु आर मैनेजिंग द कोर्स एंड दे विल अंडरस्टैंड वेदर यू आर फिट टू टेक ए कोर्स और नॉट। इफ यू आर मेडिकली नॉट फिट देन बेटर गेट यूर सेल्फ क्यूर्ड बाई एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन एंड देन कम फॉर मेडिटेशन। धर्म सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सार्वजनीन है, इसमें संशय शंका को कोई गुंजाइश नहीं। अगर इस प्रकार के धर्म में भी गुरु मुष्टि चिपक जाए, अरे गड़बड़ हो जाएगा। जो गुरु मुष्टि रखता है ये बात तो हम किसी को बताएंगे नहीं, हमारी ही है, वो आदमी गुरु नहीं। लेकिन पात्र में जितनी जितनी योग्यता आए उतना उतना बताता चला जाए। जो किंडरगार्टन में आया है उसको एटॉमिक थ्योरी समझाना शुरू करें, बेचारे के क्या पल्ले पड़ेगा। उसको किंडरगार्टन की बात समझाएंगे, मैट्रिक तक पहुंचेगा मैट्रिक की बात समझाएंगे, ग्रेजुएट की बात समझाएंगे, फिर डॉक्टरेट की बात समझाएंगे। कोई आचार्य मुष्टि होती नहीं धर्म में। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? तो पहले ये समझाओ आत्मा है परमात्मा है और फिर ऐसा है फिर वैसा है। अरे भाई कुछ अंतर हो या न हो, तुम राग जगाते हो ना, द्वेष जगाते हो ना, व्याकुल होते हो ना, कुदरत के नियम तोड़ते हो ना, है तो भी तोड़ते हो ना, न है तो भी तोड़ते हो ना, उसका अंतर ऐसा है कि वैसा है। दुनिया में इससे निकम्मी बात कोई नहीं होती। जो जितनी दार्शनिक बातें हैं दुनिया की सारी निकम्मी से निकम्मी बातें, आदमी अपना सारा जीवन खो देता है उसमें, ये समझ करके मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। धर्म का और दर्शन का कोई तालमेल नहीं, जैसे धर्म का और संप्रदाय का तालमेल नहीं, इसी प्रकार इन दोनों का तालमेल नहीं। सम ऑफ माई रेस्पेक्टेड एल्डर्स चांट मंत्रास, ओ लेट देम चांट, व्हाई यू वरी, यू शुड नॉट हैव अवर्शन टुवर्ड्स पीपल, यू डोंट एक्सपेक्ट दैट एवरीबॉडी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विपश्यना एंड कम आउट ऑफ दिस डिफेक्ट और दैट डिफेक्ट। नेवर हैव अवर्शन टुवर्ड्स एनीबॉडी। आज के देश में, आज के दौर में सत्य क्या है? ऊपर ऊपर के सत्य हजार हों, भीतर का सत्य क्या है वो हमारे काम की बात है। भीतर का सत्य जिसने जान लिया उसके लिए बाहर का सत्य खूब समझ में आने लगेगा। कोई काम गलत भी हो रहा है तो उसके प्रति करुणा जागेगी, बेचारा बहुत दुखियारा है इसलिए देखो ऐसे कर रहा है, ऐसे बहुत स्पष्ट होगा। सदाचार के नाम पर यदि मैं सत्य बोलूं, सत्य तो बोलो ही भाई, किसी को धोखा दे करके अगर झूठ बोलते हो तो अपनी हानि पहले होती है, इससे बचना चाहिए। गुरु जी के प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुई, प्रवचनों से ही प्रभावित होकर रह गई तो कमी रह गई, अब डुबकी लगा करके प्रभावित हो तो कल्याण की बात होगी। व्हाट इज री इनकारनेशन? एवरी मोमेंट इज री इनकारनेशन। एवरी मोमेंट यू आर डाइंग एंड ए बर्थ टेक प्लेस, एवरी मोमेंट यू डाई एंड यू बर्थ टेक, यू बोर्न यू गेट बोर्न डाइंग एंड जन्मते हैं मरते हैं, प्रतिक्षण ये क्रम चल रहा है और न जाने कब से चल रहा है और कब तक चलता जाएगा। तृष्णा क्या होती है अपने भीतर देखेंगे तो मालूम होगा, जो प्रिय लगा उसे चाहने लगे उसे रोकने लगे वही तृष्णा है, जो अप्रिय लगा उसे दूर करना चाह वही तृष्णा है, दूर करने की तृष्णा है। इफ टाइम इज नॉट लीनियर इट मस्ट बी देन रिवॉल्विंग राउंड सर्टन सिनिकल ऑर्डर परहैप्स इन एग्जैक्ट ऑर्डर। यस द नेचर वर्क्स इन अ वेरी एग्जैक्ट ऑर्डर बट मियरली एक्सेप्टिंग इट एट द इंटेलेक्चुअल लेवल विल नॉट हेल्प यू, एक्सपीरियंस इट एंड विल सर्टनली स्टार्ट हेल्पिंग यू। मेरे परिवार को खाने का चावल नहीं तो ध्यान कैसे करें? एक बार भगवान के पास कोई भूखा आदमी आया तो उन्होंने नहीं धर्म सिखाया उसे, पहले खाना दो, खाना खा ले उसके बाद धर्म सिखाओ, भूखे भजन न हो ये गोपाला, भूखा रहेगा तो भजन कैसे करेगा? तो साधना तो और गहरी बात है कैसे करेगा, तो इसीलिए 10 दिन खाने का प्रबंध है, मत घबराओ। बुद्ध ने कहा अनात्म और आपने कहा अनात्म व्याख्या में मुझे फर्क लगा, करो तो सारे फर्क दूर हो जाएंगे, बिना किए बिना तो बुद्धि विलास, तो बुद्धि विलास है, तर्कों की अपनी सीमा होती है, बुद्धि की अपनी सीमा होती है, आज एक बात बड़ी तर्क संगत लगती है कल बिल्कुल अतार्किक लगने लगेगी, करोगे अनुभव करोगे तो सारे तर्क दूर हो जाएंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी। क्षमा करना ही धर्म है कहते हैं, क्षमा करके अपना कल्याण करोगे ना, क्षमा नहीं करोगे भीतर ही भीतर कुटते रहोगे, उसने ऐसा कर दिया, उसने हमारा इतना बुरा कर दिया, तो उसका तो बुरा होगा नहीं होगा पता नहीं, अपना बुरा तो किए जा रहे हो, तो अपनी बुराई खुद न करो, अपने पर धावा मत बोलो, अपने पर आक्रमण मत करो, अपने आप का खुद दुश्मन मत बनो, इसी को क्षमा करना कहते हैं। विपश्यना आज के युग में बहुत लाभकारी है, हमें भी लाभ हुआ है, अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो ही रहा है, होना ही चाहिए। भगवान बुद्ध के जीवन में ज्योतिषियों का कथन क्यों सत्य हुआ, आज ज्योतिष विद्या क्यों सत्य नहीं है, ये ज्योतिषियों से पूछो भाई, विपश्यना का आचार्य क्या कहेगा, हम किसे तो विपश्यना के प्रश्न पूछो, हम जवाब देंगे इस बात का। धन्यवाद, सुखी हो, सुखी सुखी।